ओम। आज का प्रातः क्लास है 10:12 हर्ष। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। आप समान बनाने का पुरुषार्थ क्या है? बाप है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो बच्चों को भी नंबरवार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाते हैं। बनेंगे तो नंबरवार ही। कहते हैं जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, वैसे बच्चे भी बने। ये तो मीठे बच्चे जानते हैं सभी एक समान नहीं बनेंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सभी एक समान पास विधानर्स नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ तो कराते हैं ना? तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो, तो बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे? सभी कहेंगे हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। अब ये तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी को भी तो देखो ना। बाप भी ऊंचे ऊंचे है और टीचर भी ऊंचे ऊंचे है। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर है या गुरु नहीं कहा जाता है। ये तो एक बाप को ही कहा जाता है। वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। परंतु इस बाप को कोई जानते नहीं है। तो बाप को ही आकर के अपना परिचय देना पड़ता है। तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, परंतु जैसा है वैसा उनको जानना बड़ा मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, या तो फिर गुरु पना भूल जाएंगे। रिगार्ड भी बच्चों को बाप का रखना है। और रिगार्ड किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रिगार्ड कहा जाता है बाप जो पढ़ाते हैं, वो अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। गफलत करते हैं, रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, पंक्चुअल होकर नहीं पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड नहीं रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है। अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप आरी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हमको ऐसी खुशी है, एक समान सभी को खुशी तो रह नहीं सकती। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट होता है, उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वहां तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं और यहां तो टीचर है अनकॉमन, क्योंकि ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। जो 70-70 साल वैसी पढ़ाई पढ़ाते रहे और फिर भी स्टूडेंट पढ़ाई पूरी न कर पाए, पढ़ाई की मूल बात भी एक ही है। पवित्र बनो, योगी बनो, तो बाप जैसा कोई टीचर हो नहीं सकता। किसी को ये पता नहीं है कि निराकार फादर टीचर बनते हैं, कितना निरहंकारी है। कोई पढ़ाई को ध्यान पर नहीं रखते हैं, वर्षों बीत गए तो भी कोई अहंकार नहीं आता है। शास्त्रों में बल श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको तो पता ही नहीं है कि कृष्ण फादर कैसे हो सकता है। कृष्ण का तो बच्चे का रूप पूजा जाता है, बच्चे को तो महात्मा कहेंगे। और वो तो 16 कला संपूर्ण देवता है और यूं तो श्री कृष्ण नाम बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से वो ही कृष्ण सामने आ जाएगा। परंतु वो तो देहधारी है ना, कोई निराकारी निरहंकारी तो नहीं है। ये शरीर तो उनका नहीं है, खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार लिया है, लोन लिया है। पहले भी मनुष्य था और अभी भी ये मनुष्य है, ये कोई भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही निराकार है, जो आकर तुम बच्चों को आप समान बना कर ले जाते हैं। निराकार आत्मा ज्योतिबिंदु बना कर ले जाते हैं ना। अभी तुम बच्चों को कितनी राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल बाप समझना, टीचर समझना, गुरु समझना, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी देहदारी की तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनली बाप बाप है, टीचर है, सदगुरु है, ये निश्चय बुद्धि अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। लौकिक पढ़ाई में स्टूडेंट कब टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वो तो टीचर को कब भूलेंगे नहीं। स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहे पढ़े हैं तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वे भी पक्के नहीं हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। कहेंगे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट तो हैं, जानते सभी हैं कि अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हम पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वातावरण कैसा अच्छा होना चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है क्योंकि तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो कभी आ हुसैन नहीं बदम मचाना चाहिए, या हुसैन मचाना ये है हाईएस्ट रोना। कौन से धर्म वाले या हुसैन मचाते हैं भक्ति मार्ग में? अभी तक ऐसे भी रोते रहते हैं जैसे कि 100% तमोगुणी है। जो रोते हैं उनको कहा जाता है 100% तमोगुणी। इसलिए बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच के ऊंच बादशाही खो बैठते हैं। कहते तो हैं कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आए हैं, परंतु वो चलन कहाँ दिखाई देती है। बाप तो बहुत बड़ी बहुत ऊंची मंजिल पर ले जाते हैं, कल्प कल्प बाप आकर बड़ी बड़ी मंजिल पर ले जाते हैं। ऐसे नहीं है, ये ब्रह्मा उस मंजिल पर पहुंचा हुआ है, नहीं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। उस मंजिल पर पहुंचने का पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास होकर के स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाती है। तो कहेंगे नंबर वार तो होते ही हैं, तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं और कोई नहीं भी पढ़ते हैं। जैसे गांवड़े वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, उनको घास काटने के लिए बोलो तो बड़ी खुशी से चले जाएंगे। समझते हैं इसमें स्वतंत्र लाइफ है, पढ़ना लिखना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। اور ساہوکاروں میں زمیندار لوگ بھی کوئی کم نہیں ہوتے ہیں. اپن کو انڈیپینڈنٹ بڑا خوشی میں سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ نوکری نام تو نہیں ہے نا, نوکر تو داس داسی کو کہا جاتا ہے. آفیسز میں تو منشیہ نوکری کرتے ہیں. ابھی تم بچوں کو تو باپ پڑھاتے ہیں وشو کا مالک بنانے کے لیے کہ نوکری کے لیے پڑھاتے ہیں؟ ابھی دیکھو منشیوں کی مینٹلٹی کیسی ہو گئی ہے, پڑھائی کس لیے پڑھتے ہیں؟ داس داسی بننے کے لیے. باپ تو نوکر چاکر بنانے کے لیے نہیں پڑھاتے ہیں. پھر بھی ڈرامہ انوسار نوکر چاکر بنتے تو ہیں نا, نہیں پڑھتے ہیں تو نوکر چاکر بن پڑھتے ہیں. بڑی اونچ پڑھائی ٹھہری, اسکول ہے برابر, پرنتو تم کوئی نوکری کرنے کے لیے نہیں پڑھتے ہو. تم تو وشو کے مالک سوتنتر بن جاتے ہو. کتنی سہج بات سمجھاتے ہیں. ایک ہی پڑھاتے ہیں جس سے تم اتنا اونچ مہاراجہ مہارانی بنتے ہو, سو بھی پوتر مہاراجہ مہارانی. تم تو کہتے ہو کہ کوئی بھی دھرم والا آ کر کے پڑھے سمجھیں گے یہ پڑھائی تو بہت اونچی ہے, پڑھائی سے ہی وشو کا مالک بنتے ہیں. آسری پڑھائیوں سے کوئی وشو کا مالک نہ بنا ہے اور نہ بنے گا. یہ سہج راجیوگ کی پڑھائی تو باپ پڑھاتے ہیں. ابھی تمہاری کتنی وشال بدھی بنی ہے, حد کی بدھی سے نکال کر بابا تم کو بے حد کی بدھی میں لایا ہے, اور لایا بھی ہے نمبر وار پرشارتھ انوسار. کتنی خوشی رہتی ہے کہ ہم بھی اوروں کو وشو کا مالک بناوے. واستو میں نوکری تو بھل کہاں بھی ہوتی ہے, داس داسیاں نوکر چاکر آدی تو سبھی جگہ چاہیے. جانتے ہیں کہ پڑھے آگے یا نہ پڑھے نو بھری ڈوبیں گے, اس لیے باپ کہتے ہیں کہ اچھی ریتی پڑھو تو تم یہ وشو کے مالک بن سکتے ہو. پرنتو پڑھیں گے نہیں تو پھر کیا بنیں گے؟ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر باپ کو اتنا ریگارڈ سے یاد بھی نہیں کرتے ہیں. باپ کہتے ہیں جتنا تم یاد کریں گے تو تمہارے وکرم وناش ہوں گے اور تم یہ لکشمی نارائن بن جائیں گے. تو بچے کہیں گے بابا جیسے آپ چلاؤ, اور باپ مت بھی تو ان کے دوارا دیں گے نا. پرنتو ان کی مت بھی نہیں لیتے ہیں کہ نہ کہ है, दो है ना, इसलिए इसकी नहीं कहा, इनकी कहा। इनकी मत भी नहीं लेते हैं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मत पर ही चलते हैं, मनुष्य मत पर चलते हैं, मन मत पर चल पड़ते हैं, देखते भी हैं कि शिव बाबा इस रथ में आकर मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चल पड़ते हैं। जिसको पाई पैसे की मत कहा जाता है, रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बुद्धि बन गई है। अभी राम शिव बाबा मत देते हैं, इस निश्चय में ही विजय है। ऐसे समझने में कभी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान समझते भी हैं, तो बाबा नुकसान को भी फायदे में बदल देंगे। परंतु अनिश्चय बुद्धि वालों को नहीं, निश्चय बुद्धि वालों को, क्योंकि संशय बुद्धि वाले तो और ही घुटका खाते रहेंगे। जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो कब घुटका नहीं खावेंगे, समझेंगे जरूर शिव बाबा इस रथ पर बैठा है, वो शिव बाबा ही हमको मत देते हैं, पक्का निश्चय बुद्धि वाले को तब भी कोई प्रकार का घाटा नहीं पड़ सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं। कई बच्चे मुझते हैं, पता नहीं ये मत इनकी है या शिव बाबा की है, अब वो तो कहते हैं हमेशा शिव बाबा की हिम्मत पर चलो और हमेशा शिव बाबा की मत समझो, फिर भी कहते मुझे ये मत पसंद नहीं है, तो जरूर अपनी मत पसंद है। मनुष्य मत को देहदारी की मत कहा जाता है, देहदारी उसे कहा जाता है जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो। देही अभिमानी की मत आधा कल्प थी, वहां दुख की कोई बात नहीं होती है, यहां तो है ही मनुष्य मत। गाया भी जाता है मनुष्य मत, दैवी मत और ईश्वरीय मत। अभी तुम समझते हो ईश्वरीय मत हमको मिलती है, जिस ईश्वर की मत से ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर वहां स्वर्ग में तो सुख ही पाते रहेंगे। ईश्वरीय मत पर चलने से दुख की 21 जन्म तक कोई बात नहीं होगी। उस समय स्थाई सुख रह जाता है। इस समय तो तुमको बहुत फीलिंग में आना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अभी ये तो है पुरुषोत्तम संगम, जबकि तुमको ऊंचे ऊंचे बाप की मत मिलती है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, उस संगम युग को तुम ही जानते हो। और बाप की मत पर चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम अपने कपड़े आदि बदली करो? सन्यासियों में सल बल कुछ भी पहनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते बहुतों के कनेक्शन में आना पड़ता है, तो रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं। कोई भी कपड़ा पहनो, इन कपड़ों आदि से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो, बाकी भल कुछ भी पहनो। कहते हैं अपन को आत्मा समझ, आत्म की स्थिति का पक्का निश्चय करो। ये भी जानते हो कि आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। कहेंगे ये पतित आत्मा है, ये पावन आत्मा है, महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा कब नहीं कहेंगे। खुद भी कहते हैं महान आत्मा, परंतु महान परमात्मा अक्षर तो कब नहीं सुना होगा। परंतु इतने तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो इतनी बातों को भी समझते नहीं है, ये महान परमात्मा कहना तो शोभता भी नहीं है। पुण्य परमात्मा कब कहना शोभता है? पुण्यात्मा कहेंगे, पापात्मा कहेंगे, पाप परमात्मा कहना शोभता है? वो तो और ही नहीं शोभेगा। इसका मतलब कि आत्माएं पुण्य और पाप करती हैं, तो पुण्य आत्मा और पाप आत्मा कही जाती है। आत्माएं महान कार्य करती हैं तो महात्मा कहे जाते हैं। साधु संत होते हैं, साधना करते हैं, इंद्रियों को साधते हैं ना, तो साधु कहे जाते हैं। अब परमात्मा कोई इंद्रियों को साधता है क्या? इतनी सहज बात भी कभी नहीं समझते। तुम ये कह सकते हो कि ईश्वर कैसे सर्वव्यापी है, अगर सर्वव्यापी होता तो पाप परमात्मा कहते, पुण्य परमात्मा कहते, महान परमात्मा कहते, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है ना। तो जरूर परमात्मा अलग रहा, आत्माएं अलग हुई। ये कितनी अच्छी बातें हैं समझने की। सदगुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही है, वहां कब अकाली मौत नहीं होती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं जिनकी कब अकाली मौत नहीं होगी। आगे तो तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं थी, कल्प की आयु कितनी है ये भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आ गई, ये भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को पुण्यात्मा महात्मा कहा जाता है, पाप आत्मा कहा जाता है, परंतु पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि परमात्मा तो पाप पुण्य से परे है। करण करावन हार तो है, कोई शरीर में प्रवेश करके कर्मेंद्रियों से कर्म करता भी है और कराता भी है, परंतु लगाव पूर्वक कर्म नहीं करता तो न कोई पाप बनता है और न कोई पुण्य बनता है। वो तो सदैव निर्लेप है, उसको काब कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि वो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। फिर कोई कहे कि परमात्मा सर्वव्यापी है तो ये कितनी बेसमझी है। सर्व आत्माएं जो पार्ट बजाती है वो तो लगाव पूर्वक बजाती है, देह का लगाव तो रहता है ना। ये बात बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम समझते हो, हर 5-4 वर्ष के बाद बाप आकर पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाते हैं। और एक को नहीं बनाते हैं, सभी बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूं, तो जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सत्युग में होते ही हैं पवित्र आत्माएं, सत्युग बनाने वाला सत्य बाप एक ही है, वो एक ही सदगुरु है, बाकी तो सब असत्य। और सच्ची बात सुनाकर सत्युग की स्थापना करते हैं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्यात्मा बन जाते हो, फील करते हो माया कितना बिघन डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो कि माया से युद्ध कैसे चलता है, उन्होंने फिर पांडवों और कौरवों की युद्ध बैठे दिखाई। लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाते हैं, परंतु इस विकारों के युद्ध का किसी को पता नहीं है। और ये तो गुप्त युद्ध है, इस गुप्त युद्ध की बात तुम ही जानते हो, जानते हो कि माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा ये काम है, योग बल से तुम इस पर जीत पहनो। और योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते, कि योग किससे लगाए, मनुष्यों का मनुष्यों से योग हो जाता है, अब मनुष्य तो कोई भी निष्कामी नहीं है। सबको अपना अपना रथ है, तो सबको स्वार्थ लगा रहता है, सब इच्छा वाले हैं। बल बाप आते हैं तो तुम बच्चों को सिखाते हैं कि इच्छा मात्र में विद्या होना है, तभी पक्का पक्का आत्मा बनेंगे। तो तुम जानते हो कि एक बाप ही है जो सदैव इच्छा मात्र में विद्या है, सदैव निष्काम है। जो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम भी बाप समान बन जावेंगे। योग बल का अर्थ अब तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि किससे योग लगाने से बल प्राप्त होता है। आत्मा बलवान बन जाती है, अभी रावण राज्य में देखो क्या हाल हुआ है, जो बिल्कुल सतो प्रधान थे वो फिर बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। बाप खुद कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, जिसके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं वो ये भी बहुत तमो प्रधान बना है। तत्त्वम जैसे वो तमो प्रधान बना है तुम भी बनते हो। बाबा कोई एक को थोड़े ही कहेंगे, नंबरवार सभी को कहते हैं। और नंबरवार कौन कौन बनते हैं वो तुमको सारे कल्प में कब पता नहीं पड़ता, सिर्फ अभी संगम युग पर ही पता पड़ता है। आगे चल करके तुमको साफ पता पड़ जाएगा क्या क्या पता पड़ जाएगा नंबर वार का कि कौन कौन आत्माएं किस नंबर वाली है, मालाएं बनती है ना, आठ की माला, 108 की माला, 1008 ब्रह्मा की भुजाएं वो भी माला, 16108 की माला, लाख लाख रुद्र रुद्र के मणके बनाते हैं, संगठन तो है ना, संगठन को ही माला कहा जाता है। तो अलग अलग संगठन संगठनों में मालाओं में कौन किस नंबर का पद पावेंगे, कौन किस नंबर का मणका बनेंगे, साहब को पता पड़ जाएगा। माला का तुमको साक्षात्कार करावेंगे, स्कूलों में भी जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर होने से पहले सभी को अपने रिजल्ट का पता पड़ जाता है कि मैं क्लास में किस नंबर में पास हुआ, सारी रिजल्ट निकल जाती है। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे पेपर कहां से आते हैं, बोली हमारे पेपर लंदन से आते हैं। वेद का लंदन कौन है, है? जो ज्ञान का बहुत लेन देन करते हैं वो है बेहद के लंदनवासी। अभी वो स्थूल लंदनवासी है, वो ज्ञान धन का लेन देन करते हैं या स्थूल धन का लेन देन करते हैं, उन्होंने तो स्थूल धन का लेन देन किया। तुम बच्चों में है बेहद के लंदनवासी, तो बच्ची ने बोला लंदन से पेपर आते हैं। अब बताओ ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती बेहद का लंदन करने वाला कौन, ब्रह्मा ने ज्यादा लेनदेन किया, ब्रह्मा के मगज में कुछ बैठा भी है,
पढ़ाई के लिए लेनदेन,
पढ़ाई
के लिए लेनदेन कर
रहे, ब्रह्मा
पढ़ रहे,
पढ़ रहे लेनदेन कर रहे, कुछ मगज में बैठता है, है? प्रजापिता लेनदेन करता है किससे, शिव बाप से लेन देन करता है। शिव बाप भारतवासी हो गया और उससे लेन देन प्रजापिता करता है, ऐसे बताओ सबसे जास्ती लेन देन कौन करता है, जगदम्बा। गंगा ने भी उतना लेन देन नहीं किया, भला आदि से अंत में गान गंगाएं प्रत्यक्ष होती है, कहेंगे आदि में थोड़ा लेन देन करने का फाउंडेशन पड़ा, लेकिन लंबे समय तक लेन देन नहीं किया। तो बाबा पूछते हैं, अब तुम्हारे पेपर कहां से निकलेंगे? कहां से निकलेंगे? हैं? जगदम्बा ही महाकाली बनती है। कहां की वासी है? कलकत्ता की वासी है। कलकत्ता की वासी तो महाकाली है। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है, इससे पर कलकत्ते की अम्बा है, सारे जगत की अम्बा है। तो बताओ तुम्हारे पेपर कहां से निकलेंगे? हैं? दिल्ली कैपिटल है, ऊपर है या नीचे है? हैं? दिल्ली को क्या कहेंगे, ऊपर है या नीचे है? है? जगदम्बा को क्या कहेंगे, नीचे कीचड़ में फंसी हुई है या कमल के फूल पर है? है? उसकी बुद्धि कहां फंसी हुई है? है? विष्णु के चित्र में चार भुजाएं दिखाई गई हैं। कमल कौन से हाथ में है? है? जगदम्बा के हाथ में कमल है। कमल कहाँ रहता है? कीचड़ की दुनिया में रहता है। फिर भी बुद्धि कहाँ है? जैसे कमल कीचड़ में रहता है, फिर भी उसके ऊपर एक बूंद कीचड़ की नहीं रह ठहरती, ऐसे ही जगदम्बा की बुद्धि भी बाप में लगी हुई है, बल तमोप्रधान बनती है, तो भी काली के चित्र में मस्तक में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। तो तुम्हारा पेपर भी ऊपर से आवेगा, उसे ऊंची स्टेज कहेंगे या नीची स्टेज कहेंगे? है? ऊंची स्टेज कहेंगे। और इन पेपर्स का सभी साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है, कौन पढ़ाते हैं ये किसी को पता नहीं है। कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच। अब पढ़ाई में सभी नंबरवार हैं, तो खुशी भी नंबरवार होगी। ये जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है और भले बाबा जानते हैं ये बच्चे कब गिरने वाले नहीं है। परंतु फिर पता नहीं क्या हुआ है। देखो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। कहेंगे तकदीर में नहीं है, थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जा करके अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चले जाओ। कहां से निकल करके कहां चले जाते हैं, उनकी चलन उनका बोलना करना ऐसा होता है, समझते हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर के अलग रहें, तो चलन से ही उनका समझा जाता है। और बाप कोई अंतर्यामी नहीं है, सबकी चलन से ही समझा जाता है। कौन सा बाप अंतर्यामी नहीं है? आत्माओं का बाप या मनुष्यों का बाप? चलन अच्छी नहीं है इसका मतलब निश्चय नहीं है, लाचारी में यहां बैठे हुए हैं, बहुत हैं जो ज्ञान की रिंचक भी नहीं जानते हैं। और क्लास में कब बैठते भी नहीं है, ऐसे भी माया उनको पढ़ने ही नहीं देती। और ऐसे ऐसे सभी सेंटर्स पर होते हैं, कब पढ़ने के लिए आवेंगे ही नहीं। कितनी वंडरफुल बातें, कितनी ऊंची नॉलेज, ऊंच के ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। तो वचन सुनना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं आवेंगे। बाबा कहे ये काम नहीं करो, मानेंगे ही नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखावेंगे। बाप कहेंगे राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी पद बनेंगे, कोई नौकर चाकर बनेंगे, कोई चंडाल के दास दासी बनेंगे, अब मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। तो देखो यहां भी नंबरवार मर्तबे बनते हैं, भले ईश्वर की पढ़ाई है, ऊंचते ऊंच पढ़ाई है, सिर्फ फर्क क्या है, वहां आयु बड़ी रहती है और सुख रहता है, यहां आयु छोटी है और दुख रहता है। बाकी पढ़ाई में नंबरवार मर्तबे तो सब जगह बनते हैं। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं, कैसा ड्रामा बना हुआ है, फिर कल्प कल्प वो ही पार्ट बजावेंगे, कल्प कल्प वो ही पार्ट बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है, वो ही फीचर्स और वो ही एक्टिविटी चलती रहती है। ये सृष्टि का चक्र सदा फिरता ही रहता है, कहेंगे बनी बनाई बन रही है, अब कछु बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये चक्र फिर भी रिपीट होगा, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आवेंगे, इसमें मुझने की बात नहीं है। आखिरी पूछते हैं, अच्छा अपन को आत्मा समझते हो, आत्मा का बाप शिव बाबा है ये तो समझते हो ना, जो सतो प्रधान बनते हैं वो ही फिर तमो प्रधान बनते हैं। 84 जन्म भी मानते हो, फिर सतो प्रधान बनने से ही तुम देवी देवता बनेंगे। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, ये तो अच्छी बात है ना। अगर ये बात बुद्धि में बैठे तो उसी समय यहाँ ठहरा देना चाहिए। बोलो, वेद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो ही पतित पावन है, वो ही बाप नालिश देते हैं, और इस नालिश में शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। शुरू शुरू में शास्त्र कहां से आवेंगे, ये तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में शास्त्र बनाते हैं। बना द्वापर के आज में शास्त्र नहीं बन गए, द्वापर के आज में कोई एक ने बोले होंगे, जैसे धर्म पिताएं आते हैं तो बोलते हैं, परंतु उस समय उनका शास्त्र थोड़ा तैयार हो जाता है। जब उनके फॉलोअर्स की बहुत संख्या हो जाती है तो शास्त्र बनता है, बाइबल बनी, कुरान बनी, धम्मपद बना, ग्रंथ साहब बना। तो ऐसे ही ये शास्त्र द्वापर के आज से नहीं बनते हैं, क्योंकि द्वापर के आज में तो फिर भी कहेंगे द्वापर के आज में सतो प्रधान तक की। उन शास्त्रों के सच्चाई के अर्थ बुद्धि में थे परंतु लिखावट में नहीं थे। बाद में जैसे जैसे युग तमो प्रधान होता गया, जो गुरुओं के चेले बने उन्होंने उसमें मिलावट कर दी। जैसे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में मुरली के महावाक्यों में मिलावट कर दी गई, कटिंग कर दी गई, सच्चाई को उड़ाई दिया। और सतयुग त्रेता में तो शास्त्र होते ही नहीं, परंपरा तो कोई चीज नहीं होती है। नाम रूप तो जरूर बदल जाएगा। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।